आमने सामने। इससे पहले कि रॉकी अपनी भड़ास निकाल पाता, उससे पहले उसकी नज़र आस्था पर पड़ी, जिसे देखकर वो पूरी तरह से फ्रीज हो गया। अब आगे, आस्था ने बिना देर किए रॉकी के सामने अपना नाटक कंटिन्यू किया। सॉरी सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ी जल्दी में थी और कहीं जा रही थी, इसीलिए आपके कार से टकरा गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना सुनते ही रॉकी जैसे अपने ख्वाब से बाहर आया, वो फटाफट आस्था के पास आया और एकदम से बोला, तुम तो वही लड़की हो ना जो उस दिन मुझे क्लब में मिली थी। इस पर आस्था ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए इमोशनल होने का नाटक किया। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक गरीब लड़की हूँ, उस दिन मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। असल में मेरी एक मजबूरी आ गई थी जिसकी वजह से मुझे एक दिन के लिए उस क्लब में काम करना पड़ा, लेकिन अब मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करती। फ़िलहाल मैं अभी किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, आस्था ने ऐसे जताया जैसे वो काफ़ी परेशान हो। आस्था के शब्दों ने रॉकी को हक्का बक्का कर दिया। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन दिखाई देने लगे थे और वो एकदम से सोचने लगा कि ये लड़की कैसी बातें कर रही है, इस लड़की को पैसों की मजबूरी कैसे हो सकती है, जबकि मैंने इसे खुद ऑस्ट्रेलिया से प्राइवेट जेट में जाते हुए देखा था। इतना याद आते ही रॉकी ने आस्था को शक भरी नज़रों से देखते हुए फट से पूछा, क्या बकवास कर रही हो तुम, मैंने तुम्हें खुद ऑस्ट्रेलिया से प्राइवेट जेट में जाते हुए देखा था, तो फिर तुम्हें पैसों की क्या मजबूरी हो सकती है कि तुम्हें क्लब में काम कर रही थी, सच सच बताओ कौन हो तुम। रॉकी के इन शब्दों को सुनकर आस्था के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, उसकी चाल थोड़ी सी उलझ गई थी। उसने सोचा था कि गरीब लड़की का नाटक करके वो आसानी से रॉकी को यकीन दिला देगी कि उसे काम की कितनी ज़रूरत है, लेकिन अब आस्था को मामला उल्टा पड़ता दिख रहा था। उसने सिचुएशन को भांपते हुए खुद के इमोशंस को संभाला, गहरी सांस ली और तुरंत एक नई कहानी कर दी। देखिए, मैं अमीर हूँ या गरीब, इसे आपको क्या मतलब? हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, लेकिन अपनी मालकिन के साथ। मेरी मालकिन ने मुझे अपने बेटे की नैनी के काम के लिए रखा हुआ था, इसीलिए वे जहाँ भी जाते थे मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। शायद वो उस वक्त किसी मीटिंग के सिलसिले में वहाँ गए थे और हम प्राइवेट जेट से ही वापस आ गए थे, लेकिन चार दिन पहले उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया था। उस दिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसीलिए मजबूरी में मुझे अपनी सहेली के जरिए क्लब में काम करना पड़ा। इतना कहकर आस्था मायूस हो गई। आस्था की बेचारी सी शक्ल देखकर हॉकी को कहीं ना कहीं उसकी बातों पर यकीन होने लगा था, क्योंकि उसने जब इन्वेस्टिगेशन करवाई थी तब उसे भी पता चला था कि प्राइवेट जेट में एक बच्चे के साथ उसकी नैनी भी मौजूद थी, इसीलिए रॉकी ने बात का रुख बदल दिया। देखो, अगर तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है, अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें एक दिन के 5 लाख रुपए दूंगा। इतना कहते हुए उसने आस्था को चालाकी से देखा। इस पर आस्था की आंखें चमकने लगी, उसने खुश होने का दिखावा किया, वो हिचकिचाते हुए मुस्कराई, फिर जल्दी से बोली, क्या सच में? लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, ये कहते हुए उसने तुरंत नासमझ बनने का नाटक किया। तब रॉकी ने आस्था को समझाया, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें बस मेरे बॉस के साथ एक मीटिंग करनी होगी, अगर पहली ही मीटिंग में तुमने मेरे बॉस को खुश कर दिया तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। इतना सुनते ही आस्था ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं, लेकिन बाहर से खुद को शांत दिखाने के लिए वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, देखिए, मैं भी पैसों के सिलसिले में नौकरी ढूंढ रही थी, अगर आप मुझे एक अच्छी नौकरी ऑफर कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ और हो नहीं सकती, लेकिन मुझे क्या क्या करना होगा, क्या मुझे उनकी देखभाल करनी होगी? इस पर रॉकी ने तुरंत कहा, मेरे बॉस ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, हमें उनके लिए एक सर्वेंट चाहिए, वैसे भी तुम एक बच्चे को अच्छे से संभाल चुकी हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बॉस को भी संभाल लोगी, बस पहले तुम उनसे एक बार मिल लो, अगर उन्हें तुम पसंद आ गई तो मैं तुम्हें एक दिन के 1 लाख रुपए दूंगा। इतना कहते ही वो चुप हो गया और आस्था को अपनी शातिर नज़रों से देखने लगा। असल में रॉकी आज तक किसी भी लड़की को ज़बरदस्ती अपने बॉस के पास नहीं लेकर गया था, वो हमेशा उन्हें सच बताकर ही ले जाता था और आस्था तो खुद ही वहाँ चलने के लिए तैयार थी। रॉकी की इस बात पर आस्था ने थोड़ी देर सोचने का नाटक किया, फिर बोली, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वहीं सभी के सभी लड़के आस्था और रॉकी को टकटकी लगाए अपनी अपनी दूरबीन से देख रहे थे। वहीं आहान ध्रुव की तरफ देखकर एकदम से बोला, देखा तुमने, भाभी एक्टिंग में कितनी माहिर निकली, उन्होंने तो उस ब्लैक डेविल किंग के चेले को भी इस बात का यकीन दिला दिया कि वाकई में उन्हें पैसों की कितनी ज़रूरत है। फिर अचानक ध्रुव तभी हुई आवाज़ में बोला, वैसे यार मानना पड़ेगा, भाभी भाई के लिए कितना बड़ा रिस्क ले रही है। उनकी बातें सुनकर अबीर को बेचैन हो रही थी, वो परेशान आवाज़ में बोला, हाँ, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ बटरफ्लाई रोकने के लिए। लेकिन तभी अविनाश उसे आंखें दिखाते हुए रहस्यमयी ढंग से बोला, अगर तुम वहां गए तो शायद आस्था को ये ठीक न लगे, क्योंकि वो अपने पति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और अपनी जान भी दे सकती है। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। कहीं ना कहीं सभी के मन में एक अलग तरह का डर सा बना हुआ था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें जाकर आस्था को रोक देना चाहिए, लेकिन तभी अचानक उन्होंने सामने का नजारा देखा तो उन सबकी आंखें हैरानी से चौड़ी होती चली गईं। वहीं आस्था, जो अब जल्दी से रॉकी के पास जाकर उसकी कार में बैठने वाली थी, तभी अचानक उसके पास एक ब्लैक कलर की शानदार कार आकर झट से रुकती है। अब सबके सब अपनी अपनी दूरबीन लगाकर उस कार की ओर एकटक देखने लगते हैं। कहीं ना कहीं सबके मन में यही सवाल चल रहा था, अचानक से ये कार यहाँ कहाँ से आ गई। अब सबको आस्था के लिए एक अलग ही तरह का डर सताने लगा था, जिस वजह से उनका दिल बुरी तरह से परेशान हो उठा था और वो सभी मन ही मन सोच रहे थे, कहीं ब्लैक डेविल किंग खुद तो यहाँ प्रकट नहीं हो गया। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका दिल लहरों की तरह समुद्र में उछल रहा हो। वो खुद को शांत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार से उतरने वाले शख्सियत को देखा तो उनकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, क्योंकि अपने पावरफुल ऑरा के साथ अरमान सिंघानिया वहां खड़ा हुआ था। अरमान को वहां देखकर आस्था की जान उसकी हलक में आ गई थी और उसका सुंदर चेहरा परेशान लग रहा था, क्योंकि अरमान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी सनक और गुस्सा नजर आ रहा था। उसने अपनी गन लोड करने के बाद रॉकी की तरफ पॉइंट कर दिया। ये देखकर रॉकी दिल से कांपने लगा। रॉकी का दिल एक अजीब से डर, घबराहट और बेचैनी से भर गया था और वो अरमान को देखकर अटकती हुई आवाज में बोला, आप डेविल किंग, आप यहां क्या कर रहे हैं? यहां क्या हो रहा है? ये लड़की, इससे पहले वो अपने शब्दों को पूरा कर पाता, उससे पहले अरमान ने उसे कुछ और कहने का मौका दिए बिना अपनी गन सीधा उसके माथे के बीचों बीच निशाना लगाकर उसे उड़ा दिया और रॉकी पूरी तरह से वहीं ढेर हो चुका था। अब ये दृश्य देखकर सभी लड़के एक दूसरे की शक्ल हैरानी से देखने लगे थे। अरमान की आंखों की बेरुखी देखकर कोई भी कह सकता था कि ये तूफान से पहले की शांति है। वहीं अबीर तुरंत मुस्कुराकर बोला, अरे ये साइको यहां कहां से आ गया? पर कुछ भी कहो, कम से कम इसने पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। मेरा भी मन उस रॉकी के टुकड़े टुकड़े कर देने का कर रहा था।
इस पर सब लोग अबीर को हल्की मुस्कुराहट के साथ देखने लगे थे, लेकिन अब देर ना करते हुए सभी फटाफट अरमान और आस्था के पास आकर खड़े हो गए थे। वहीं आस्था पूरी तरह से घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान को किस तरह से फेस करे। वो बात करने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। अचानक अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और तुरंत उसे कार में बैठा दिया। वहीं बाकी सब अजीब सा महसूस करने लगे थे, इसलिए उन्होंने अपना सर झिझक के मारे झुका लिया था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे वो अरमान को क्या जवाब दे। अरमान के एक्सप्रेशन बेहद गंभीर हो गए थे। उसने एक नज़र रॉकी की लाश की तरफ देखा और सबको घूरते हुए गहरी और कड़क आवाज में बोला, इसकी लाश इस तरह से गायब कर दो कि किसी को इसकी भनक तक न लग पाए। इतना बोलकर अरमान ने बिना देरी किए कार स्टार्ट की और आस्था को लेकर वहां से रवाना हो गया। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक अरमान वहां से जा चुका था। सब लोग हैरानी और अविश्वास भरी नज़रों से उसे वहां से जाते देखते रह गए। तभी आकाश और सुमित एकदम से बोले, लगता है डेविल किंग वापस आ चुका है और न जाने अब ये क्या तबाही मचाएगा। अपनी बात खत्म करते ही वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान डरावनी थी, उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस थी। फिलहाल अरमान के इस रिएक्शन को देखकर थोड़ी देर चुप्पी के बाद सबने गहरी सांस ली, क्योंकि अरमान सिंघानिया बड़े ही पावरफुल ओरा के साथ अपनी बीवी को लेकर वहां से जा चुका था। इसलिए अब देर न करते हुए सबने मिलकर फटाफट से रॉकी की बॉडी को ठिकाने लगा दिया था और अच्छी तरह से सारी सिचुएशन संभाल ली थी, ताकि आसपास कहीं भी कोई सबूत न रह जाए और किसी को कोई भनक तक न लगे। उसके बाद सभी लोग सीधे अरमान की सुपरफास्ट चल रही कार को फॉलो करने लगे थे। अरमान सिंघानिया ने इस बीच आस्था से कोई भी बातचीत नहीं की थी। आस्था खुद अपने ही ख्यालों में गुमसुम बैठी हुई थी। उसकी आंखों में इस वक्त डर ही डर नजर आ रहा था। अरमान को देखकर आस्था को अजीब सी झिझक होने लगी थी, इसलिए उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अरमान से पूछ सके कि आखिरकार वो वहां क्यों आया था और उसे कैसे पता चला कि वो यहां रॉकी के साथ डाकविला जाने वाली थी। इसी बीच अरमान लगातार आस्था को अपनी जानलेवा नजरों से टकटकी लगाकर देख रहा था, और जब जब अरमान उसे घूर कर देखता तब तब उसके शरीर में करंट की तरह सनसनी दौड़ पड़ती थी। उसकी वो नज़र आस्था के शरीर में सिहरन दौड़ाने के लिए काफी थी। फिलहाल अरमान ने एक घंटे का सफर मिनटों में तय कर लिया था और सीधा सिंघानिया मेंशन के सामने आकर कार रोक दी थी। वहीं बाकी सब भी उस कार के पीछे आ रहे थे। सभी अरमान का गुस्सा साफ साफ समझ पा रहे थे और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अरमान से कोई बात कर सके या फिर उससे ये सवाल पूछ सके कि वो अचानक से वहां क्यों प्रकट हो गया। सभी का दिल अनजानी आशंका से बुरी तरह से धक धक कर रहा था। सबने मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद के इमोशंस को संभाला और अब सब एक साथ सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके थे। वहीं अरमान ने कार से उतरकर कार का साइड वाला दरवाजा खोला और आस्था का हाथ थामते हुए सिंघानिया मेंशन का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगा। बाकी सभी भी उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करने लगे थे। अब जैसे ही वो सब लोग अंदर दाखिल हुए तो वो सब हॉल से आती हुई कुछ आवाजें सुनकर एकदम से ठिठक गए थे, क्योंकि हॉल में इस वक्त कोई और नहीं बल्कि वसुंधरा और वीर बैठे हुए थे। वसुंधरा और वीर को वहां देखकर घर के सभी सदस्य हैरत में पड़ गए थे। सभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी आहान तुरंत वीर के पास तमतमाते हुए आया और फौरन उसके गिरेबान को पकड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से यहाँ आने की? कहीं एक बार फिर से तुम लोग कोई चाल चलने के लिए तो यहाँ नहीं आए हो? हाँ बताओ मुझे, इस बार कौन से मकसद के लिए यहाँ आए हो? इस बार मेरे भाई के साथ क्या करने वाले हो? जमीन जायदाद अपने नाम करवाओगे या फिर हम में से किसी को जान से मरवाओगे? बोलो, जवाब दो, क्या करने के लिए यहाँ आए हो तुम दोनों माँ बेटे? आहान की बातें सुनकर वीर ने अपनी नजरें झुका ली थी। उसने किसी को कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी वसुंधरा नम आंखों से आहान को देखकर बोली, बेटा हम यहाँ कुछ भी करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ मिलकर जुलकर रहने के लिए आए हैं। अब जैसे ही सबने वसुंधरा के मुंह से ये शब्द सुने तो सबके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी थी। वो सब वसुंधरा को काफी रूखेपन से देखे जा रहे थे। इस पर आहान भड़क कर बोला, अपनी फालतू की बकवास बंद करो और ये बताओ किसके कहने पर यहाँ आए हो? बोलो, जवाब दो। लेकिन तभी वहां अरमान की ठंडी आवाज सुनाई दी, इन्हें मैं यहाँ लेकर आया हूँ और आज के बाद ये दोनों यहीं रहेंगे। अरमान की बात सुनकर आगे किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो वसुंधरा या वीर से कोई भी सवाल जवाब कर सके। आस्था को वसुंधरा के आने पर कहीं ना कहीं खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन वो उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। उल्टा वो बार बार अरमान के चेहरे की ओर असमंजस भरी निगाहों से देख रही थी। काश उसे ऐसा कोई तो सुराग मिल जाए जिससे उसे पता चले कि उसके पति की यादें वापस आ गई हों और शायद इसी वजह से वो एक बार फिर से उसका वही पोजेसिव पति बन गया हो। आस्था के दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कान किसी खुशखबरी को सुनने के लिए पूरी तरह से बेताब हों। उसे इस बात का अंदेशा होने लगा था कि शायद उसके पति की याददाश्त वापस आ गई है।